ओम शांति। आदरणीय गीताबेन जी फिर से हमारे समक्ष उपस्थित हैं। हम स्वागत करेंगे एक हाथ की ताली से। संगम युग पर एक बार ही पूरे कल्प में बाबा हमें पढ़ाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, तो वो बाबा के प्यार भरे इशारे हमारे प्रति क्या हैं? इस विषय पर हम सुनेंगे गीताबेन जी से।
ओम शांति। मधुबन की भूमि नेचुरल तपोभूमि है। यहाँ नेचुरल योग बाबा से लगता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्योंकि मधुबन बाबा का है, यज्ञ बाबा का है, इस भूमि पर बाबा स्वयं संपूर्ण बने, तपस्या भी की और सेवा भी यहां से ही शुरू हुई। तो यहाँ की हर बात में बाबा की याद समाई हुई है। वैसे तो बाबा ने 33 वर्ष साकार में पढ़ाई कराई, जीवन की छोटी छोटी बातें बाबा ने समझाई हमें, कैसे उठना बैठना, देखना बोलना चलना, खाना पीना पहनना, प्रैक्टिकल जीवन की हर बात बाबा ने सिखाई। हम महसूस करते हैं कि भल कितने भी पढ़े लिखे हैं हम, कितने भी खानदान परिवार से हैं, पर फिर भी बाबा के बनने से कितना सीखा है। दिनचर्या की छोटी मोटी हर बात बाबा ने सिखाई, ज्ञान का हर सत्य नए नए तरीके से विस्तार से समझाएं। तो ये साकार रूप में बाबा ने पढ़ाई कराई, वो ही रिवाइज कोर्स में हम पढ़ रहे हैं। और उसके बाद बाबा ने अव्यक्त रूप से 69 से लेकर 2015 46 ईयर्स अव्यक्त पालना बाबा ने दी। हम सब ने अपनी आंखों से देखा, बाबा से मिलन मनाया है ना सब ने, अपनी आंखों से देखा कि भगवान कैसे लाइट माइट स्वरूप है, ज्ञान की बरसात करते हैं, कितना प्यार करते हैं और कितने न्यारे और प्यारे हैं। मानव जीवन की ऊंचे से ऊंची मंजिल संपूर्ण बनना, उसकी स्टेप बाय स्टेप हर बात बाबा ने बताई है ना, कि हम भी कैसे संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बने। अब इस सीजन में सबने देखा कि पूरी सीजन बाबा ने हम आत्माओं को प्यार किया है, महिमा की है, वाह वाह की है, और इस प्रकार हमारे में हिम्मत उमंग उत्साह को बढ़ाए। बच्चों की एग्जाम नजदीक होती है, ये एग्जाम के दिन होते हैं तो माँ बाप बहुत केयर करते हैं बच्चे की, है ना, अटेंशन देते हैं, हिम्मत भरते हैं, उमंग उत्साह भरते हैं कि कहाँ है बच्चा, हिम्मत ना हार जाए, टेंस ना हो जाए। तो बाबा ने भी इतना प्यार किया है, ये हमारे में हिम्मत भरी है, उमंग उत्साह भरा है, क्योंकि एग्जाम के दिन आ गए है। पूरा संगम हमने क्या किया वो अब हमारे सामने आएगा। कि हमने बाबा का बनकर पढ़ाई कैसी की, अपने कर्म कैसे किए, भगवान के मददगार हम कितने बने, ये रिजल्ट अब सामने आना है। फिर भी इस प्यार प्यार की बातों में बाबा ने कुछ इशारे भी हम बच्चों को दिए हैं। हम तो हर साल 6 मास जो बाबा की अव्यक्त वाणियां चलती हैं, जो होमवर्क बाबा उसमें हमें देते हैं, वो ही होमवर्क बाकी के 6 मास करते हैं। अक्टूबर से मार्च तक बाबा पढ़ाते हैं, तो अप्रैल से सितंबर तक हमें उसका होमवर्क करना होता है। टीचर सबको एक सरीखा ही पढ़ाता है, लेकिन नंबर वो विद्यार्थी लेता है जो होमवर्क अच्छा करते हैं। ऐसे नहीं टीचर गए तो पढ़ाई भी एक तरफ रह गई, ऐसे नहीं। हम होमवर्क कितना अच्छा करते हैं उसके आधार पर स्थिति बना सकते हैं। तो कोई लंबी चौड़ी भात भात की योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सिंपल बात है कि बाबा जो कहकर जाते हैं, जो अंडरलाइन कराते हैं, जो होमवर्क देते हैं, उसी पर हमें फोकस होना है, उसी को फॉलो करना है। तो सिंपल पुरुषार्थ हमारा चलता रहता है। क्योंकि बाबा तो हर सीजन में आकर आगे की ही बात करेगा, बाबा रुकेगा नहीं, ड्रामा रुकेगा नहीं, वो तो अपनी पढ़ाई आगे ही आगे बढ़ाता जाएगा, हमें उनके साथ साथ आगे बढ़ना है। तो काफी मार्जिन बाबा ने हम बच्चों को दी है, ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद भी 46 इयर्स बाबा ने पढ़ाया है। जो जब भी बाबा का बना, चलो कोई 5 साल से बना, 2 साल से बना, 10 साल से बना, हिसाब वो है कि जब से बाबा के बने तब से हमारा जीवन क्या रहा। कई बार हम ये एक्सक्यूज निकालते हैं, बहाना निकालते हैं कि हम भी शुरू से आते, हम भी साकार में आते, हम भी इतने सालों के पुराने होते, पता नहीं हम कौन से तारे तोड़ के लाने वाले थे, पर ये एक एक्सक्यूज होता है, मानव मन का ये बहाना होता है। बात तो ये है कि जब से हम बाबा के बने तब से हमने क्या किया, हिसाब वो है। कि तब से हमने क्या किया, अपने लक्ष्य में फोकस रहे, टाइम वेस्ट नहीं किया, पूरी दृढ़ता से चले, जो बाबा ने कहा वो किया, वो खुद को चेक करना है। तो सीजन की मुरलियां आप भी एक बार, दो बार, तीन बार अच्छी तरह से स्टडी करना और उसका सार निकालना, तो हमें मिल जाता है कि इस वर्ष प्यार प्यार में भी भले बाबा ने बहुत कम बात की, ज्यादा प्यार ही किया, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें बाबा ने हमें बताई हैं। तो हमारे लिए क्लियर हो जाएगा कि अब हमें किस बात पर ध्यान देना है। तो वो इशारे मैं आपको बताऊंगी, आप नोट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और फिर आप अपनी रीति से भी स्टडी करके निकाल सकते हैं। ये हमारा इस साल का होमवर्क है, इसलिए हमें इस पर अटेंशन देना है ना। अक्सर कई बार होता है कि क्या पुरुषार्थ करना है, तो ये हम सबका सौभाग्य है कि अभी तक भी हर वर्ष बाप दादा आते हैं और हमें होमवर्क देते हैं, लेटेस्ट गाइडेंस देते हैं। एग्जाम्स होते हैं तो टीचर श्योर सजेशंस देते हैं, लोग उसी पर फोकस करते हैं। तो एक पहला पॉइंट है, बाबा ने कहा है ये उड़ने का समय है, मेरा बना दिया तो याद अमर है, तो याद अमर है, योग मेहनत का विषय नहीं, प्यार और अपनेपन का विषय। जितना बाबा से जिगरी सच्चा प्यार और बाबा से अपनापन, उसको याद भूलती नहीं। तो मेरा बना दिया, माना बाबा को मेरा कर दिया, मेरा बाबा, मीठा बाबा, बस ये मेरापन, अपनापन आ गया ना, तो हम बाबा को भूल नहीं सके। योग कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है, हठ दमन की चीज नहीं है, योग कोई क्रिया नहीं है, सिंपल बात भगवान को याद करना, प्यार करना, उस याद और प्यार में एकाग्र हो जाना, वही योग है। तो समय उड़ने का है, चलने का नहीं, दौड़ने का नहीं, हाई जंप का नहीं, उड़ने का। विमान उड़ने से पहले क्या करता है, क्या करता है, रनवे पर कितना फास्ट दौड़ के फिर उड़ता है। इसलिए पिछले कई सालों से तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ की बातें बाबा ने की, क्योंकि अब उड़ने का समय। तो देखो, मेरा बाबा से जिगरी अपनापन है, और कोई मेरी बुद्धि में ना हो। संगम युग भगवान से प्यार करने का युग है। अभी कोई देहधारी को प्यार करने का ये समय नहीं है, है ना? हमारा रूहानी प्यार सबसे है, पर दिल का जिगरी प्यार एक परमात्मा से। इसलिए और कोई है तो उसको बोल दो दूसरे जन्म में, अभी नहीं। हाँ, दूसरी बात, संगम युग की सौगात, बाप और बच्चों का मिलन, मतलब ये सामान्य बात नहीं है कि बाबा आते हैं और हम सब मिलते हैं। अपनी इन आंखों से हम देखते हैं, 5000 वर्ष के चक्र में, संगम युग में ही ये मिलता है। जो सदा खुश रहते हैं उन पर बाबा का दिल का प्यार होता है। अब हम छोटे नहीं हैं, अब हम बड़े हैं। माँ बाप इतना प्यार पालना पढ़ाई कराते हैं, उसके बाद भी अगर बच्चा जीवन भर रोता रहे तो वो अच्छा लगेगा माँ बाप को कि भाई अब तो अपने पांव पर खड़े हो जाओ, हाँ, इतना तुमको पढ़ाया सिखाया, नौकरी पर चढ़ाया, शादी की, अब तो तुम अपनी हिम्मत से अपनी गृहस्थी चलाओ। तो बाबा भी हमसे क्या चाहेंगे कि हम सदा खुशी से अपना ब्राह्मण जीवन जी, हर बात में छोटी छोटी बात लेकर बाबा के पास कंप्लेन लेके हम पहुंच जाते हैं और रोते रहते हैं कि बाबा ये हुआ, बाबा वो मुसीबत, बाबा ये पेपर, बाबा यहाँ आप मदद करना। हाँ, तो बाबा कहेंगे अभी तक ये तो कमजोर ही है। हम बाबा से ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि कुछ भी हो हम खुश रहेंगे। भगवान को जो देना था वो उसने तो दे दिया है ना। अब अपने हिसाब किताब तो खुद को ही चुकाने होते ना। उसमें भी रोते रहेंगे क्या, रोज उठ के बाबा को कंप्लेन करते रहेंगे? तो जो हिम्मत से अपनी जीवन जीते हैं ज्ञान युग की, बाबा को उस पर प्यार रहता है, वो दिल से प्यार करते हैं। भले सबके बीच में स्टेज पर बुलाकर ना करे, पर उनको डायरेक्ट दिल से प्यार मिलता है। और ये सदा खुश रहना माना ही सदा दीपक के समान चमकते रहना। खुशी आउटकम है, रिजल्ट है खुशी। जो सदा ठीक से चलते हैं वो जरूर खुश रहेंगे, है ना। आर्टिफिशियल खुश नहीं रह सकता इंसान, बनावटी नहीं, दिखावटी नहीं, है ना। पर जो अपना सब कुछ सफल करता है, सही रहता है, उसके चेहरे पर खुशी जरूर रहे। समझदार बच्चा माँ बाप के आगे सदा खुश रहेगा, क्योंकि उसको पता है थोड़ा भी मेरा दुखी रहना माँ बाप को और ज्यादा दुखी कर देना है। उसने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए अब मुझे खुद अपनी ताकत से अपने हिसाब पार करने हैं। तो बाबा क्या चाहते हैं? दिव्य स्वरूप, सदा ज्योति स्वरूप देखने में आए, साकार शारीरिक साधारण स्वरूप गायब हो जाए। तो इस वर्ष ये अभ्यास करना है कि सदा रहे कि मैं चमकती हुई चैतन्य मणि, जगमगाता हुआ चैतन्य दीपक, वो ज्योति स्वरूप दिखाए। ये साधारण रूप गायब हो जाए। रात को अंधेरे में दूर से मोटर आती हैं, उनके फोकस इतने पावरफुल होते हैं कि मोटर नहीं दिखती है, क्या दिखता है? वो दो लाइट ही दिखती है। ऐसे शरीर न दिखे, हमारी रूहानियत दिखे, हमारी रूहानी लाइट माइट दिखाई। हम साधारण शरीरधारी मनुष्य न दिखे, ये योगी हैं वो दिखे। इसलिए पूरा वर्ष बार 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 भ्रकुटी में दिव्य ज्योति स्वरूप में रहना, देखना सारे दिन में हम कहां रहते हैं। घड़ी घड़ी पेट में चले जाते हैं, भूख लगी तो उस समय हम कहां हैं? कभी बैठे हैं यहाँ पर कोई बात सुनने का रस तो कान में चले गए, ब्रकुटी से कान में चले गए, कभी आंख में चले जाते हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं, तो वहां बुद्धि गई, बार बार फिर यहाँ जाना, यहाँ से लाइट माइट दिखती रहे। ऐसा बार बार अभ्यास करेंगे ना तो फिर नेचुरल हो जाता। चौथी बात, माया के किसी भी रूप से सेफ रहो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माया के कोई भी रूप से सेफ रहो, माया का आसुरी रूप है या ईश्वरीय रूप है, माया का ईश्वरीय रूप भी होता है ना, हाँ? बाबा कहते हैं ना रॉयल रूप से माया आती है, ब्राह्मणों के द्वारा आती है, ईश्वरीय परिवार के द्वारा आती है, निमित्त आत्माओं से आती है, एक दो से एक दो को आती है। सीता कब फंस गई, जब रावण ने ब्राह्मण रूप लिया, साधु रूप लिया, तो ब्राह्मणों के द्वारा माया आती है, एक दो को, दुनिया की माया से हम जीत के आ गए, लौकिक वालों से जीत के आ गए, अब एक दो से आती है ना, तो सावधान कि माया वैरायटी रूप लेती, माया के कोई भी स्वरूप में फंसना नहीं। जब भी कोई अचानक देखे सदा खुशनुमा दिखाई दे, जब भी कोई अचानक देखे सदा खुशनुमा दिखाई दे, नेचुरल खुशी का स्वरूप। कोई नए आते हैं तो हम बहुत खुशी से बात करते, कोई वीआईपी आते हैं तो हम बहुत फरिश्ता बन के बात करते, पर आपस में सदा एक स्वरूप। मैंने अब हमें खुद महसूस हो कि मेरा अंदर बाहर एक हो, दो रूप नहीं, भाई घर में पति पत्नी बैठे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, अचानक मेहमान आता है तो दोनों क्या करते हैं, आइए आइए बहुत खुशी हुई, यही स्वरूप पहले एक दो को दिखाते थे तो झगड़ा होता ही नहीं ना। जो प्यार का रूप मेहमान को दिखाए वही एक दो को दिखा देते थे, तो बनावटी रूप हो गया ना, नेचुरल सदा खुशनुमा स्वरूप। यह हमें खुद लक्ष्य रखना पड़ता है कि कोई भी कारण से मुझे अवस्था बिगाड़नी नहीं है, अवस्था इंपॉर्टेंट है, भाई चीज टूट गई फूट गई 150 रुपए की, पर कितनी अमूल्य स्थिति बिगाड़ देते हैं कि तुमने तोड़ दी, ये कर दी, वो कर दी, आधा घंटा भाषण चलते, चीज से ज्यादा वैल्यूएबल तो अवस्था है। तो कुछ भी कारण से स्थिति बिगाड़नी नहीं है, ये लक्ष्य रखने की पुरुषार्थ करना है। एक और बात फिर से बाबा ने अंडरलाइन कराई, अमृत वेले अमृत पीना आवश्यक है। इस सीजन में भी ये बात फिर से बाबा ने पक्की कराई, अमृत वेले बाबा ने कहा, तीव्र पुरुषार्थी भव का वरदान रिवाइज कर लेना, रोज खुद को याद करा देना। अमृत वेले बाबा को याद करने से ही योगी जीवन का एहसास होता है, वरना तो 5-6 बजे उठकर भक्त भी याद करते हैं भगवान का। योगी जीवन का एहसास अमृत वेला उठने से होता है। उस समय जो भगवान को रिझाना चाहे, जो उनसे प्राप्त करना चाहे, वो हम कर सकते हैं। तीन चीज बाबा ने कहा चाहिए, समझ, चेकिंग और अटेंशन। समझ गहरी हो तो गहरा पुरुषार्थ कर सके, ज्ञान की गहराई हो, फिर चेकिंग, स्व चेकिंग, ज्ञान में चलते कहते ना, चलते रहना सिर्फ पर्याप्त नहीं है, पर हर कदम मंजिल की ओर चलते रहना ये इम्पोर्टेंट है। हम ज्ञान में चल रहे हैं, हम ज्ञान में चल रहे हैं, पर हर कदम मंजिल की ओर है ये चेक करना है, कहीं डाइवर्ट नहीं हो जाते, ट्रैक उतर नहीं जाते, लक्ष्य नहीं बदल लेते, ये चेक करना है। अटेंशन, इतनी लेटेस्ट सीजन में फिर बाबा ने कहा, कुसंग और अलबेलापन ना आवे। कुसंग, ईश्वरीय परिवार में भी किसका संग करना है, परख शक्ति चाहिए। चलो भाई, सेवा में कारोबार में तो किसी का भी संग मिलेगा ना, किसके संग में रहना, किसके संग में नहीं रहना, और संग में रहते हुए किसका रंग लगाना और किसका नहीं लगाना, ये विवेक चाहिए, ये परख चाहिए। इसलिए कुसंग और अलबेलापन न आवे। अलबेलापन नहीं, अंत तक बाबा कहते हैं ना, अलर्ट और तीव्र पुरुषार्थ। वो कहानी बताते हैं ना, सस्ता और कछुआ रेस थी, वो तो दौड़ दौड़ आगे पहुंच गया, बोला वो तो बहुत पीछे रह गया होगा, कछुआ तो धीरे धीरे चलता है, थोड़ा आराम कर लेता हूं। तो क्या हुआ, वो कछुआ आगे बढ़ गया, अलबेला नहीं रहता है, जब तक मंजिल पर ना पहुंचे अलबेलापन नहीं। केयरलेस नहीं हो सकते, केयर फ्री, बाबा कहते ना बेफिकर बादशाह बनो, पर अलबेले नहीं बनना है। रिवाजी चाल, साधारणता की नेचर नहीं होनी चाहिए। रिवाजी चाल माना एक कॉमन चाल से चलना, साधारणता की नेचर नहीं। हमें हमेशा ऊंची स्थिति में रहना है। बहुत जल्दी हम साधारणता में आ जाते हैं ना। देखो बाबा की याद में, योग में, भट्टी में हम बहुत ऊंची अवस्था का अनुभव करते हैं, रहते हैं, पर बहुत जल्दी वापस साधारणता में आ जाते हैं। तो साधारणता की नेचर नहीं, कॉमन चाल नहीं, सब चलते हैं ऐसे नहीं, कुछ यूनिकनेस, कुछ स्पेशल, विशेष बनना है। सिर्फ योग में अच्छी अवस्था में नहीं रहना है, सदा अच्छी अवस्था में रहना है। हम योग में ऊंची अवस्था में रहते हैं, फिर साधारण बन जाते हैं, ऐसे नहीं। बाबा ने कहा अब वो साधारणता की नेचर नहीं होनी चाहिए। एक और बहुत रिमार्केबल बात बाबा ने कही, फाइनल पेपर अचानक होना है, इसलिए पहले भी बाबा ने कहा था कि जो कुछ होना है वो अचानक होना है, इसलिए एवर रेडी रहना है। अरे हमें क्या पता, थोड़ा हमें पहले भी बताते थे ना, ऐसे कोई नहीं बताने वाला है। हाँ बाबा कहते हैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। पता है एक मुरली में 3 बार बाबा ने कहा कि बाबा नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, क्योंकि बता दे तो उसको भगवान कौन कहेगा। भगवान तो सत्य है ना, वो सत्य तोड़ नहीं सकता है। टीचर पेपर फोड़ दे और स्टूडेंट पास हो जाए, ये टीचर की महानता नहीं है। टीचर पढ़ावे ऐसा कि विद्यार्थी अपनी मेहनत से नंबर ले, तो वो बेस्ट टीचर माना जाता है। तो फाइनल पेपर अचानक होना है, इसलिए बाबा कहते हैं सदा अटेंशन चाहिए। कोई भी अपनी विशेषता को सदा काल का बनाना है, कोई भी अपनी विशेषता को सदा काल का बनाना है। टेम्पररी नहीं, पीरियोडिकल नहीं। बात आई इसलिए हम नहीं नहीं अब नहीं करेंगे, बरोबर चलेंगे, क्योंकि अब ठीक करना है ना, फिर वापस वही चल, ऐसे नहीं। हर सब्जेक्ट में हर प्रकार का अटेंशन, इस पर और मंथन करना आप। हर सब्जेक्ट में हर प्रकार का अटेंशन, थ्योरिटिकल, प्रैक्टिकल, हर प्रकार का अटेंशन। छोटी छोटी बातें रुकावट न डालें। कई बार छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं। बड़े बड़े पहाड़ हमने क्रॉस कर लिए, सारी दुनिया जो नहीं कर सकी वो हम ब्राह्मणों ने की, ब्रह्मचर्य पालन किया, जीवन का ऊंचे ते ऊंचा व्रत बाबा के बच्चों ने सहज अपनाया। अब छोटी छोटी बातें, तेरा मेरा इसका उसका स्वभाव संस्कार, बस इन छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं। तो छोटी छोटी बातें रुकावट न डालें। बाबा कहते हैं ना, रस्सियां मोटी मोटी काट दी है, अब सूक्ष्म धागों में उलझ रहे हैं। मैं सब कर सकता हूं पर ये मेरे से नहीं होगा, कहते हैं ना ऐसे। इस बात में मैं नहीं बदल सकता हूं, ऐसे नहीं। बाबा ने बहुत अच्छी बात की, कभी एक नंबर की कमी से भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। एक ही नंबर कम पर उसके कारण सेकंड नंबर हो गए, फर्स्ट नंबर नहीं आए, होता है ना एग्जाम में ऐसे। हम पढ़ते थे, हमारे क्लास में ऐसा ही था, एक दो नंबर के कारण आगे पीछे हो जाते थे। माना एक छोटी सी कमी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। कई बार हम सोचते हैं ना, सब कर लिया, सब चेंज मैंने कर लिया, बस अब एक ये छोटी सी बात है, सारी नाव अच्छी है, बस छोटा सा ही तो छेद है, हाँ चलेगा। एक कमी, एक छोटा सा छेद पूरी नाव को ले डुबो देता है। एक कमी हमें फेल कर सकती, इसलिए एक को भी क्यों रखना है। जब बदलना है, मरना है तो पूरा ही मरना है। संपूर्ण बनने का सोच अविनाशी रहे, संपूर्ण बनने का लक्ष्य घड़ी घड़ी बदले नहीं, घड़ी घड़ी डाइल्यूट नहीं करे। कई बार हम थोड़ा डाइल्यूट कर लेते हैं, चलो 80% भी हो तो क्या है, वो भी तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। नहीं, लक्ष्य सदा ऊंचा होना चाहिए, कहते हैं ना, लक्ष्य चुक माफ नहीं लक्ष्य नीचा। आप लक्ष्य को सिद्ध नहीं कर सके वो फिर भी माफ होगा, क्योंकि ऊंचा लक्ष्य सिद्ध करने की आप मेहनत की, पर लक्ष्य नीचा कर दे वो माफ नहीं। बाबा जैसा बनना है लक्ष्य यही हो, लक्ष्य और लक्षण साथ साथ चलते रहे। वही बात दूसरे शब्दों में बाबा ने कही, संपूर्णता की सीट नहीं छोड़नी है। बात को न देख आगे बढ़ने की बात को सोचो, मतलब कई बार हम कहते हैं ना, बात ही ऐसी थी ना जो गुस्सा आ गए, बात ही ऐसी थी ना जो ऐसा करना पड़ा। नहीं, ये बात हुई इसलिए ऐसा हुआ, नहीं। बात को ना देख, आगे बढ़ने की बात को सोचो। बात आई है, करना क्या है, आगे ही बढ़ना है तो क्या करना है, वो ही सोचना है। अटकना नहीं, उस पर बैठ के वहां ही सोचते नहीं रहना। एक भाई रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही बैठा था, बात हुई, बोला इसी ट्रेन में जाना था, तो हम लोगों ने कहा ये अभी तो गई, कहते हाँ मैं देखा अभी गई, पर चली गई ना। ले भाई, अब चली गई तो बैठा बैठा सोच क्यों रहा है, अब आगे कौन सी पकड़नी है या क्या करना है, वो करने में लगना है ना, न कि वो सोचते रहना है। ठीक है, भूल हुई कि तुम्हारे देखते देखते तुम बैठे थे और ट्रेन चली गई, ध्यान नहीं दिया, पर अब क्या करना है, जल्दी करो जो करना है। इस साल बाबा से कौन कौन मिले, हाथ ऊपर कर। काफी भाई बहने मिले। बाबा ने कहा ये सभा, ये हाथ उठाना, बाबा से प्रॉमिस करना, रोज रात को इमर्ज करना। हा? जब बाबा कहते हैं ना सब सदा खुश रहेंगे ना, तो दोनों हाथ उठाओ, तो हम क्या करते, उठाते हैं ना, क्योंकि बाबा ऐसा प्यार से कहता है कि ना उठाओ तो भी मुसीबत। उसका प्यार ऐसा होता है कि हम हाथ उठाते हैं ना, और बाबा सही भी है, आखिर बनना तो है ही। तो बाबा कहते हैं फिर भूल नहीं जाना, रोज याद करना कि हमने किसको प्रॉमिस किया। भगवान को प्रॉमिस किया कि हम सदा खुश रहे। इतनी बड़ी सभा में हमने हाथ उठाया है, तो ये सभा, ये हाथ उठाना, ये बाबा से प्रॉमिस करना, रोज रात को इमर्ज कर, हिम्मत को रोज पानी दो, फिर भूल नहीं जाओ, रोज रिवाइज कर। पवित्र योगी आत्माओं की सभा में, भगवान की उपस्थिति में हमने हाथ ऊपर किया है। ये कोई मनुष्य से प्रॉमिस हम नहीं कर रहे हैं, हम भगवान से प्रॉमिस कर। और दो मुरलियों में बाबा ने बार बार सबको संदेश देने की भी बात कही कि कोई भी रह न जाए, किसी का भी उलाहना ना मिले। अब चारों ओर आवाज करने वाले स्पष्ट बोले कि परिवर्तन होना ही है, ऑलरेडी हो रहा है, मिलकर आवाज बुलंद करो, बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है, इस तरफ अटेंशन दो। हमारा मुख्य कार्य यही है। जिस बाबा ने हमें दुनिया के आगे प्रत्यक्ष किया, उस बाप को हमें प्रत्यक्ष करना है, ये वचन भूल नहीं जाना है। ऐसा नहीं अपना तो काम हो गया ना, हम तो दुनिया के आगे प्रत्यक्ष हो गए, ऐसे नहीं। रामायण में बताते हैं ना कि सुग्रीव ने कहा कि मेरी राजाई चली गई है, वाली उसके ब्रदर ने ले ली, आप मुझे वो राजाई वापस दिलाने में मदद करो तो मैं आपको सीता ढूंढने में मदद करूंगा, है ना, ऐसी है ना बात। फिर सुग्रीव को राजाई दिला दी तो वो तो फिर क्या करने लगा, अमन चमन में पड़ गया, वो तो शराब महफिल में डूब गया। तो फिर किसने जाकर जगाया, लक्ष्मण ने जाके जगाया कि भाई तुम भूल गए तुम्हारा वचन। तो हमें ऐसा नहीं करना है, कि बाबा ने हमें दुनिया के आगे प्रत्यक्ष किया, वरना हमें कौन जानता था। आज सारी दुनिया कितनी ऊंची नजर से हमें देखती है कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, ये ओम शांति वाले है, है ना, कितनी ऊंची नजर से देखते हैं। तो बस उसी में खुश नहीं हो जाना है, हमारा फर्ज है बाबा को प्रत्यक्ष करना। तो हर घड़ी हर नाम मान शान महिमा में कौन याद रहे, हमें बाबा याद रहे तो बाबा प्रत्यक्ष होगा। अगर हम ही वो महिमा स्वीकार करने लगेंगे तो बाबा कैसे प्रत्यक्ष होगा। तो जीवन की हर सफलता में उसी क्षण बाबा याद रहे, वो हमारी महिमा करते हो पर हम मन ही मन बाबा की महिमा करे, बाबा का शुक्रिया करे कि बाबा ये आपकी महिमा हो रही है मेरी नहीं है, मैं तो आपके तरफ से निमित्त मात्र हूं। तो इस पर ध्यान देना है, है ना? कमी को समाप्त कर विशेषता को धारण करना है, अमृत वेले रिवाइज कर हमेशा के लिए अटेंशन देते देते बाप समान बन ही जाना है। रोज अमृत वेले रिवाइज करना है इस संकल्प को कि बाबा आपके जैसा मुझे बनना ही है, और फिर सारा दिन अटेंशन देते देते आखिर बन ही जाना है। एक और बात बाबा ने बताई, अभी ऐसा समय आने वाला है जो इन दिनों को याद करेंगे। ये इनडायरेक्ट इशारा है, ड्रामा में कब क्या पार्ट बदल जाए हम कह नहीं सकते। अभी ऐसा समय आने वाला है जो इन दिनों को याद करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इनडायरेक्ट इशारा है बाबा का। इसलिए अब तक जो भी मिले हैं बाबा से भाग्यशाली, फिर वो भी चांस नहीं रहेगा, तो इन दिनों को लोग याद करेंगे। इसलिए आप अपना कार्य करते रहो, फिर चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे, न पुरुषार्थ कर सकेंगे न सेवा कर सकेंगे। परिस्थितियां ऐसी हो जाएगी चाहते हुए नहीं कर सकेंगे, अभी अपना कार्य करते रहो। लास्ट बाबा ने एक बात कही, पुरानी बातें हैं उसको भुला दो, चाहे खुद के जीवन की हैं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। एक कसक रह जाती है व्यक्ति के मन में कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। जवाब तो बाबा ने दिया है कि जो कुछ होता है वो कर्मी के अकाउंट से ही होता है, उसे स्वीकार करना है, पर वो स्वीकार नहीं हो पाता है, इसलिए बार बार पुरानी बातें याद आती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। अभी बहुत पावरफुल योग की आवश्यकता है, पूरा समेट कर एकाग्रता से बैठना है, साधारण याद नहीं, और पावरफुल वातावरण बनाओ, घर का सेंटर का पावरफुल वातावरण बनाओ, संगठन की शक्ति से सेवा प्लान सफल बनाओ। पांच पांच फीट दस जगह खोदेंगे, इससे क्या होगा, एक ही जगह पचास फीट खोदो तो कुछ पानी भी निकलेगा। मिलके प्लान सफल कर, और लास्ट बाबा ने कहा अपना संगम युगी स्वरूप सदा याद रखो। संगम युगी स्वरूप की बहुत महिमा है। कौन सा है हमारा संगम युगी स्वरूप? ब्राह्मण स्वरूप, योगी स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञानी तो आत्मा स्वरूप, भगवान के साथी, कितने हमारे टाइटल है। माना ये साधारण बात नहीं है। बाबा के बच्चों ने बहुत बड़ा कार्य किया है जो सारी दुनिया नहीं कर सकती है। बात सिर्फ अब ये है कि पवित्र और योगी बनकर अब हमें क्या करना है। अब हमें अपना समय संकल्प किसमें सफल करना है। सारी दुनिया को पवित्र योगी बनने में मुसीबत है, वो नहीं कर पाते। वो हमारी महानता है कि हमारा जीवन पवित्र और योगी हमने बनाया है। इस पवित्र योगी जीवन का उपयोग किसमें करना है? अवगुण देखने में, लड़ने में, तेरा मेरा करने में नहीं, इस ब्राह्मण जीवन का सेकेंड संकल्प सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो ये बाबा की सीजन का सार, आगे छह मास इसी पर अटेंशन देकर हमें चलना है, ताकि हम बाबा जैसा चाहते हैं ऐसा बनते जाएंगे। ओम शांति।
ओ बाबा तुम कैसा बनना है, एक यही तमन्ना है। ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है। व्यक्त से अव्यक्त हो, व्यक्त से अव्यक्त हो, मीठे वतन में चलना है। ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है।
गीता बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद।